بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کے سبھی شروتاؤں کو زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ پریہ شروتاؤں، آج کے کاریکرم کا شبھارمبھ ہم پوتر قرآن کے سورہ بقرہ کی 207 سے 209 آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ تلاوت کا شرح پایا ہے شری سبز علی نے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة خطوات الشيطان، إنه لكم عدو فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتین کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور لوگوں میں وہ بھی ہے جو ایشور کی مرضی کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، اور ایشور اپنے بندوں کے پرتی اتین کرونا میں ہے۔ ہے ایمان والو، تم سب پورن روپ سے اسلام میں پروشت ہو جاؤ، اور شیطان کے پچنوں کا انسرن نہ کرو، کہ نسندے وہ تمہارا کھلا ہوا شترو ہے۔ پھر یدی تم اسپشٹ نشانیوں کے آ جانے کے بعد بھی لڑکھڑا گئے، तो जान लो कि निसंदेह ईश्वर अत्यंत प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, हमारा प्रसारण आप 60वें में 31 मीटर बैंड बराबर 9800 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। आज शनिवार है, दे की 23, रजब की 1 और जनवरी की 13 तारीख। इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे विश्व समाचार, उसके बाद राजनीतिक चर्चा, उसके बाद हम आपको भोजन पर्यटन के बारे में कार्यक्रम सुनाएंगे और अंतिम कार्यक्रम होगा अच्छी आदतें। ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए। वेबसाइट का पता है parsstudio.ir/hi। अब आप सैयद मीसम और मरियम मेहरदादी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। यमन ने चेतावनी दी है कि रेड सी में अमरीकी जहाजों और युद्धपोतों को निशाना बनाया जाएगा। यमन के अधिकारी ने कहा है कि यमन को हमलावरों का कब्रिस्तान बना देंगे। रूस ने यमन पर अमरीका और ब्रिटेन के हमलों की कड़ी निंदा की है। अमरीका ने कहा है कि हम ईरान से जंग नहीं चाहते हैं। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन ने चेतावनी दी है कि अमरीका और ब्रिटेन की आक्रामकता का जवाब जमीन पर और समुद्र में दिया जाएगा और रेड सी में अमरीकी जहाजों और युद्धपोतों को निशाना बनाया जाएगा। अंसारुल्लाह के सूचना विभाग के प्रमुख नसरुद्दीन आमिर ने शुक्रवार को चेतावनी देते हुए कहा कि यमनी ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर अमरीकी और ब्रितानी हमले असफल रहे हैं क्योंकि वाशिंगटन इससे अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में विफल रहा है। उन्होंने कहा कि हम अमरीकी और इसराइली युद्धपोतों और जहाजों को निशाना बनाने की पूरी क्षमता रखते हैं और अमरीकी आक्रामकता का उचित जवाब जरूर देंगे। अंसारुल्लाह के अधिकारी ने यह भी कहा कि अमरीकी हमले इसराइली हितों को सुरक्षित रखने के लिए किए जा रहे हैं और यमनी बलों को इन हमलों से कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। इस बीच तेहरान में यमन के राजदूत इब्राहिम अल दैलमी ने कहा कि यमन के सशस्त्र बल पश्चिम के हमलों से अचंभित नहीं हुए हैं क्योंकि रेड सी में पहले से ही अमरीकी और ब्रिटिश सेनाओं से उनका टकराव जारी है।
यमन की उच्च राजनीतिक परिषद के अध्यक्ष ने अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों पर प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि इन हमलों से यमन का दृष्टिकोण परिवर्तित नहीं होगा और यमनी अमेरिका और ब्रिटेन के लिए सिद्ध कर देंगे कि ये देश हमलावरों का कब्रिस्तान है। مہدی الموشات نے اپنے بھاشن میں امریکہ اور برٹین کو چیتاونی دی ہے اور ایک ساکشاتکار میں امریکہ اور برٹین کے حملوں میں شہید ہونے والے کچھ یمنیوں کی اور سنکیت کیا اور کہا کہ یمنیوں کا لہو ملیوان ہے اور یمنیوں کا پرتیشودھ بھلایا نہ جا سکے گا اور امریکہ برٹین اور زائنش سرکار کے اپرادھوں کے کارن فلسطین کے سمبندھ میں یمن کا سمرتھن جاری رہے گا۔ اسی پرکار انہوں نے کہا کہ فلسطین میں ہم اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارا لہو آپ کے لہو سے ادھک لال و رنگین نہیں ہے اور ہم ویوہارک روپ سے آپ کے ساتھ ہیں اور فلسطین کے لوگ دشمن کے مقابلے میں اکیلے نہیں ہیں اور اس بات سے ہماری انتراتما شانت و آشوست ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سمسیاؤں کے سمادھان کا راستہ غزہ پٹی میں اسرائیل کے پاشوک حملوں کا بند ہونا ہے جو امریکہ کے سمرتھن سے جاری ہے، نہ کہ یمن پر حملہ کرنے سے۔
روس نے یمن پر امریکہ اور برٹین کے ہوائی حملوں کی کڑی نندا کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملے سنیکت راشٹر سنگھ کے چارٹر کے کھلا انگن ہیں۔ سنیکت راشٹر میں روس کے راجدوت ویسیلی نیبینزیا نے ان حملوں کو انوچت بتاتے ہوئے کہا کہ یہ سنیکت راشٹر کے چارٹر کے آرٹیکل 2 کا الگھن ہے۔ نیبینزیا نے کہا کہ جہازوں کی سرکشا ایک معاملہ ہے اور ان پر حملے اسویکار رہے ہیں، لیکن کسی دیش پر حملہ کرنا پورن روپ سے انوچت اور غیر قانونی ہے۔ روسی راجنیک نے کہا کہ یمن پر بمباری کرنے کے لیے کوئی وید کارن موجود نہیں ہے اور اپنی سیماؤں سے ہزاروں میل دور آتم رکشا کے ادھیکار کے بارے میں بات کرنا اور بھی ہاسیاسپد ہے۔ نیبینزیا کا کہنا تھا کہ امریکہ تتھا کتھت خطروں کا بہانہ کرتا ہے اور انتراشٹریہ قانونوں کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی اسی لاپرواہی کی وجہ سے پہلے سے ہی جل رہے مدھیہ پور میں استھتی اور بھی خراب ہو جائے گی۔
ایران نے یمن پر امریکہ اور برٹین کے حملوں کی کڑی بھرسنا کی اور اسے یمن کی سمپربھتا اور انتراشٹریہ قانونوں کا کھلا الگھن بتایا ہے۔ ودیش منترالے کے پروکتا ناصر کنانی نے امریکہ اور برٹین کے حملوں کی بھرسنا کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملے امریکہ اور برٹین کی اور سے سرکار کے سمرتھن کے پریپریکش میں ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ من مانے ڈھنگ سے کیے جانے والے ان حملوں کا پرینام شیتر میں اسرکشا اور استھائی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا۔ اسی پرکار ودیش منترالے کے پروکتا نے ان حملوں کی پنراورتی کے پریناموں کے پرتی چنتا جتاتے ہوئے وشو سمودائے کا آہوان کیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا پریچے دیتے ہوئے یدھ اور کھیتر میں اشانتی و اسرکشا کو پھیلنے سے روکے۔ اسی پرکار امریکہ اور برٹین کے حملوں پر کچھ دوسرے دیشوں نے بھی پرتکریا جتاتے ہوئے سرکشا پریشد کی آپات بیٹھک بلائی ہے۔ سعودی عرب کے ودیش منترالے نے ان حملوں کی پرتکریا میں اعلان کیا ہے کہ ریاض ان حملوں سے چنتت ہے۔ اسی پرکار سعودی عرب کے ودیش منترالے نے لال ساگر میں شانتی و سرکشا بنائے رکھنے اور تناؤ میں وردھی سے پرہیز کرنے کا آہوان کیا ہے۔ کل اور آج صبح امریکہ اور برٹین نے یمن کے سنا الحدیدہ سادہ اور جمار نگروں و پرانتوں پر حملہ کیا۔
یمن کے المسیرہ ٹی وی چینل نے آج شنیوار کی صبح رپورٹ دی ہے کہ امریکہ اور برٹین نے دوبارہ راجدھانی سنا پر بمباری کی ہے۔ اسی سمبندھ میں المیادین ٹی وی چینل نے یمن کی راجدھانی سنا کے اتر میں ایک بھیشن وسفوٹ کی آواز سنے جانے کی رپورٹ دی ہے۔ المیادین نے ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ سنا کے انتراشٹریہ ہوائی اڈے کے نکٹ ادہمی چھاونی پر میزائل سے یہ ہوائی حملہ کیا گیا ہے۔ اسی مدہ یمن کے پشچم میں استھت الحدیدہ میں دشمنوں کے یدھک ویمانوں کے اڑنے کی رپورٹیں ہیں۔ ساتھ ہی سماچار ایجنسی رائٹر نے نام نہ بتانے کی شرط پر ایک امریکی ادھیکاری کے حوالے سے کہا کہ امریکی سینا نے یمن کے خلاف دوبارہ حملہ کیا ہے۔ امریکی ٹی وی چینل سی این این نے بھی رپورٹ دی ہے کہ امریکہ نے دوبارہ یمن پر حملہ کیا ہے اور اس بار ایک راڈار سسٹم ویوستھا کو لکشیہ بنایا گیا ہے۔ سی این این نے بتایا ہے کہ کل رات کی اپیکشا امریکہ کا یہ حملہ تیز نہیں تھا۔ سی این این نے ایک امریکی ادھیکاری کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکہ نے یمن میں یہ حملہ اپنے ایک یدھ پوسٹ سے کیا ہے۔ اس کے بارے میں ابھی ادھک جانکاری پراپت نہیں ہو سکی ہے۔
واشنگٹن کی اگوائی میں یمن پر حملے کے بعد امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ایران سے جنگ نہیں چاہتا۔ امریکہ کے راشٹریہ سرکشا پریشد کے سمنوے کرتا جان کربی نے یمن میں انصار اللہ کے ٹھکانوں پر حملوں کے بعد کہا कि यमन के हूसी संगठन के ठिकानों पर हमला करने के बावजूद अमेरिका ईरान से जंग नहीं करना चाहता, हम तनाव को अधिक नहीं करना चाहते और जो कुछ हालिया कुछ दिनों के दौरान हुआ है उसकी वजह से लड़ाई व तनाव में वृद्धि का कोई कारण नहीं है। बाइडन सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि अंसारुल्ला को चाहिए कि हमलों को बंद कर दे और हम जहाजों की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने के लिए अधिक हमलों में संकोच से काम नहीं लेंगे। इसी प्रकार जॉन कर्बी ने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग करशेल की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने में गंभीर हैं और उम्मीद है कि उसी संदेश को समझ गए होंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि तनाव को बढ़ाने के जिम्मेदार हुसी और उनके समर्थक हैं। जॉन कर्बी ने कल अमेरिका की अगुवाई में 10 देशों के गठबंधन की ओर से यमन में अंसारुल्लाह के ठिकानों पर हमले के संबंध में कहा कि प्राप्त आरंभिक जानकारियां इस बात की सूचक हैं कि हमलों का बड़ा अच्छा परिणाम रहा है, किंतु हुसियों ने सकारात्मक जवाब नहीं दिया और कल का हमला उनके लिए संदेश था। हम क्षेत्र और क्षेत्र से बाहर अपने घटकों से परामर्श कर रहे हैं और इस काम को आगे भी जारी रखेंगे। इसी प्रकार जॉन कर्बी ने कहा कि हमारे हमलों का लक्ष्य हुसियों की मिसाइल क्षमता को कम करना था और उन्होंने उन जहाजों पर हमला किया जिनका गजा युद्ध से कोई संबंध नहीं था। जानकार हल्कों का मानना है कि अंसारुल्लाह ने केवल इसराइली या उन जहाजों को लक्ष्य बनाया है जो अवैध अधिकृत फिलिस्तीन की ओर जा रहे थे और अंसारुल्लाह ने इस बात की बारंबार घोषणा की है कि जबकि अमेरिका और ब्रिटेन ने इसराइल और अवैध अधिकृत फिलिस्तीन की ओर जाने वाले जहाजों की रक्षा में यमन पर हमला किया है।
अमेरिका के सबसे बड़े 5 बैंकों में से एक सिटी बैंक ने अगले 2 वर्षों के दौरान 60,000 नौकरियां कम करने का ऐलान किया है। ये बैंक दुनिया भर में कुल कर्मचारियों का 10% कर्मचारी रखते हैं। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मार्क मैसन ने कहा है कि 2023 की शुरुआत में 2,40,000 कर्मचारी थे और 2026 तक इनकी संख्या 1,80,000 तक कम किए जाने की संभावना है। सिटी बैंक ने पुनर्गठन करने की घोषणा की है क्योंकि पिछले 3 महीनों में उसे 1,80,000,000 का नुकसान हुआ था। पुनर्गठन में इस साल $1 अरब खर्च आएगा और उम्मीद है कि अध्यावधि में $2.5 अरब की बचत होगी। आर्थिक संकटों से जूझ रहे अमेरिकी बैंक ने विदेशों में अपने कई ऑपरेशन बंद कर दिए या बेच दिए और मैक्सिको में उसे अलग फर्म बना दिया है।
लापता भारतीय वायुसेना के विमान का मलबा समंदर में 3.4 किलोमीटर नीचे मिला। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान 22 जुलाई 2016 को एक अभियान के दौरान बंगाल की खाड़ी के ऊपर लापता हो गया था। विमान में 29 कर्मी सवार थे। भारतीय वायुसेना के एक परिवहन विमान का मलबा लगभग 7.5 साल बाद बंगाल की खाड़ी में करीब 3.4 किलोमीटर की गहराई में मिला है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हाल ही में राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल द्वारा ली गई तस्वीरों की जांच से पता चला है कि चेन्नई तट से 310 किलोमीटर दूरी पर समुद्र में मिला मलबा AN-32 विमान का है। मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि तस्वीरों की पड़ताल की गई जो AN-32 विमान के अनुरूप पाई गई। संभावित दुर्घटना स्थल पर यह खोज इस क्षेत्र में किसी अन्य विमान के लापता होने की खबर न होने से संभवतः भारतीय वायुसेना के दुर्घटनाग्रस्त AN-32 विमान का मलबा होने की ओर संकेत करती है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
दोस्तों, मैं हूं रविश जैदी और आपका स्वागत है राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा यमन पर किए जा रहे हमलों के बारे में,
यमन के अल मसीरा टीवी चैनल ने,
और फिर बात करेंगे आतंकवाद को लेकर पश्चिम के दोहरे मापदंड के बारे में,
डेनमार्क के अपील कोर्ट ने जिसे पूर्वी न्यायालय,
और अंत में चलेंगे भारत जहां कश्मीर में भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी का ऐलान कर दिया है।
भाजपा के राज्य शाखा के महासचिव,
तो सबसे पहले बात करते हैं अवैध आतंकी इसराइली शासन के अपराधों से ध्यान भटकाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा यमन पर आरंभ किए गए हमलों की। अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले निर्दोष फिलिस्तीनियों पर जो 75 साल से अधिक समय से जुल्म हो रहा है, वो सब अमेरिका, ब्रिटेन और कुछ यूरोपीय देशों के आशीर्वाद और व्यापक समर्थन का परिणाम है। इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी मोहम्मद मेहंदी।
यमन के अल मसीरा टीवी चैनल ने आज शनिवार की सुबह रिपोर्ट दी है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने दोबारा राजधानी सना पर बमबारी की है। इसी संबंध में अल मयादीन टीवी चैनल ने यमन की राजधानी सना के उत्तर में एक भीषण विस्फोट की आवाज सुने जाने की रिपोर्ट दी है। अल मयादीन ने एक रिपोर्ट में बताया है कि सना के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के समीप अल तैलमी छावनी पर मिसाइल से यह हवाई हमला किया गया। यमनी सेना ने ऐलान कर रखा है कि जब तक गजा पट्टी में फिलिस्तीन के निर्दोष व मजलूम लोगों के खिलाफ इसराइल के पार्श्विक हमले बंद नहीं होते, तब तक इसराइली जहाजों या हर उस जहाज को लक्ष्य बनाएंगे जो अवैध अधिकृत फिलिस्तीन की ओर जाएगा, और इसके अलावा लाल सागर में हर जहाज पूरी आजादी के साथ आवागमन कर सकता है। फिलिस्तीनियों की मातृभूमि पर अवैध कब्जे की भूमि, मानवाधिकार का राग लापने वाले अमेरिका के नतमस्तक अनुयायी और उसके दुमछल्ला ब्रिटेन ने प्रशस्त की, और आज अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले निर्दोष फिलिस्तीनियों पर जो 75 साल से अधिक समय से जुल्म व अत्याचार हो रहा है, वो सब अमेरिका, ब्रिटेन और कुछ पश्चिमी व यूरोपीय देशों के आशीर्वाद और व्यापक समर्थन का परिणाम है। और 3 महीनों से अधिक का समय बीत गया और इसराइल और अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, मगर हमास के नियंत्रण से एक भी इसराइली बंदी को न तो आजाद करा पाए और न ही हमास को खत्म कर पाए। जानकार हलकों का कहना है कि हमास ने इसराइल पर जो कुठाराघात किया है उससे उसकी कमर टूट गई है और अब वो पूरी तरह धराशायी हो गया है, और अगर अमेरिका और दूसरे पश्चिमी व यूरोपीय देश उसकी सहायता नहीं करेंगे तो इसराइल का अंत हो जाएगा, और अमेरिका और दूसरे देशों का समर्थन जानी सरकार को जिंदा रखने के लिए वेंटिलेटर का काम कर रहा है, और इन्हीं देशों के समर्थन से इसराइल का अवैध अस्तित्व बाकी है, और अगर इसराइल अपनी रक्षा में सक्षम होता तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश कभी भी उसकी रक्षा और उसके समर्थन में यमन के कमजोर देश पर हमला न करती। आज ब्रिटेन जैसे देश के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इसराइल की रक्षा और उसके समर्थन में किए जाने वाले हमले का औचित्य दर्शाते हुए उसे आत्मरक्षा का नाम दे रही हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से पूछा जाना चाहिए कि यमनियों ने आप पर कब और कहां हमला किया था जो आप आत्मरक्षा का राग अलाप कर यमन पर हमला कर रही हैं। इसी प्रकार जानकार हलकों का मानना है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने इसराइल का मनोबल बढ़ाने के लिए यमन पर हमला किया है, क्योंकि ज़ायनी सैनिकों के अंदर अब हमास और फिलिस्तीनी संघर्षकर्ताओं से मुकाबले की क्षमता व सकत नहीं रह गई है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसराइल की ताकत की खलाई खुल गई है, और इसराइल हवाई बमबारी करके फिलिस्तीन के निर्दोष व मजलूम लोगों का जो नरसंहार कर रहा है उसकी एक वजह यही है। सारांश ये कि इसराइल के मूल समर्थक अमेरिका और ब्रिटेन को बहुत अच्छी तरह ज्ञात हो गया है कि ज़ायनी सरकार के अंदर अब हमास तक से मुकाबले की क्षमता नहीं रह गई है, تو وہ اس کی مدد اور پوری دنیا میں اسرائیل کی ہو رہی فضیحت سے وشو جنمت کا دھیان بھٹکانے کے لیے کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور سرکشا پریشد کا پریوگ اپنی دادا گیری کے ہتھکنڈے کے روپ میں کر کے اپنے کرتیوں و اپرادھوں کا اوچت درشا رہے ہیں اور اسرائیل کو زندہ و باقی رکھنے کے لیے یمن جیسے کمزور دیش پر حملہ کر رہی ہیں۔
اور اب چرچا کرتے ہیں آتنکواد کو لے کر پشچیمی دیشوں کے دورے رویے کے بارے میں۔ کل تک ایرانی راج کے خلاف آتنکی کاروائیاں انجام دینے والا الاحوازیہ نامک آتنکی گٹ پشچیمی دیشوں کے لیے سنگھرش کرتا تھے، لیکن اچانک ایسا کیا ہوا کہ ڈنمارک کی عدالت اس گٹ کے سدسیوں کو سزا سنا رہی ہے؟ اس بارے میں ادھک جانکاری دے رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی قائم رضوی۔
ڈنمارک کے اپیل کورٹ نے، جسے پوروی نیایالے کے نام سے جانا جاتا ہے، 12 جنوری کو الاحوازیہ نامک پرتھکتا وادی گٹ کے 3 سدسیوں کو جیل کی سزا سنائی ہے۔ ان لوگوں پر آتنکی گتیویدھیوں کے لیے لگ بھگ $22 لاکھ اکٹھا کرنے کا آروپ ہے۔ اس نیایالے نے منگلوار کو ان تینوں لوگوں پر آتنکواد کو پھیلانے اور سعودی عرب کے لیے جاسوسی کرنے کا بھی آروپ لگایا تھا۔ کوپن ہیگن میں استھت اس نیایالے کا کہنا ہے کہ الاحوازیہ نامک پرتھکتا وادی گٹ کے یہ سدسیہ ڈنمارک کے لوگوں اور وہاں کی سنستھاؤں کی جانکاریاں ایکترت کرنے میں ویست تھے، اور ساتھ ہی وہ ایران کی سینی جانکاریوں کو بھی ایکترت کر کے سعودی عرب کی گپتچر سیوا کو پہنچا رہے تھے۔ ڈنمارک کے قانون کے انوسار ان لوگوں کو ادھکتم 12 ورشوں کی سزا ہو سکتی ہے۔ نیایالے نے آدیش دیا ہے کہ ان کو دیش سے نشکاست کر دیا جائے، حالانکہ وہ اپنی سزا ڈنمارک کی جیل میں ہی کاٹیں گے۔ ابھی یہ اسپشٹ نہیں ہو پایا ہے کہ الاحوازیہ نامک پرتھکتا وادی گٹ کے ان سدسیوں کو کب ڈنمارک سے نکالا جائے گا۔ ڈنمارک کی گپتچر سیوا کے پرمکھ کے انوسار یہ لوگ سن 2012 سے سعودی عرب کے لیے جاسوسی کا کام کر رہے تھے۔ ان لوگوں کو فروری 2022 میں ڈنمارک کی راجدھانی کے دکشن پور میں استھت رنگ اسٹین کاؤنٹی سے گرفتار کیا گیا۔ ایران کے احواز نگر میں 22 ستمبر سن 2018 کو پریڈ کے دوران کیے جانے والے آتنکی حملوں میں بھی ان لوگوں کی بھومکا کی پشتی ہوئی ہے۔ اس آتنکی حملے میں 25 لوگ شہید ہوئے تھے جبکہ 70 انی گھائل ہو گئے تھے۔ وشیش بات یہ ہے کہ اہواز کے پریڈ پر آتنکی حملے کرنے کے بعد اس آتنکی گٹ نے سعودی عرب سے سمبندھت العربیہ ٹی وی چینل پر جا کر کھلے عام اہواز کے آتنکی حملے کی ذمہ داری سویکار کی۔ الاحوازیہ نامک پرتھکتا وادی گٹ پچھلے کئی ورشوں سے ایران کے خوزستان پرانت کو اشانت بنانے کے لیے وبھن آتنکوادی کاروائیاں کر چکا ہے۔ یہ گٹ اس پرکار کی کاروائیاں کر کے خوزستان پرانت کو ایران سے الگ کرنے کے پریاس میں لگا ہوا ہے۔ یہ وہی کام ہے جس کو کرنے کے لیے عراق کی باسی سرکار نے ایران پر حملہ کیا تھا، کنتو اس میں اس کو وفلتا ہاتھ لگی تھی۔ یوروپی دیشوں ڈنمارک، سویڈن اور ہالینڈ میں رہنے والے اس پرتھکتا وادی گٹ کے سدسیوں کو گرفتار کرنے کی کوئی کوشش اس سمے نہیں کی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے اہواز کی آتنکی گھٹنا کی نندا تک نہیں کی، جس پر اسلامی گڑتنتر ایران نے کڑا ویروھ بھی جتایا تھا۔ اب جب انہی لوگوں کو سعودی عرب کے لیے یوروپی دیشوں کی جاسوسی کرتے ہوئے دیکھا گیا تو ان کو پکڑ کر ان کے ورودھ قانونی کاروائی کی گئی۔ اس پوری کہانی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آتنکواد کو لے کر پشچم نے دو مکھی نیتی اپنا رکھی ہے۔ جب تک الاحوازیہ نامک آتنکوادی گٹ اسلامی گڑتنتر ایران کے ورودھ آتنکی کاروائیاں کر رہا تھا، اس سمے تک تو پشچمی دیشوں نے اس اور سے اپنی آنکھیں موندے رکھیں، اور اس پرکار کی کاروائیوں کو انجام دینے والوں کو اپنے دیش میں ہر پرکار کی گتیویدھیاں کرنے کے لیے سوتنتر چھوڑ دیا۔ لیکن جیسے ہی الاحوازیہ کے سدسیوں کی گتیویدھیاں ان کے راشٹری ہتوں کے وپریت ہونے لگیں، اسی سمے ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا اور ان کے ورودھ نیائک کاروائی بھی کر دی گئی۔ اس پرکار کا ایک انیہ ادھارن فرانس کا بھی ہے، جہاں پر منافقین نامک آتنکوادی گٹ کے سدسیہ شانتی پورن ڈھنگ سے جیون گزار رہے ہیں، جبکہ ان کے ہاتھ ایران اور عراق جیسے دیشوں کے ہزاروں لوگوں کے خون سے سنے ہوئے ہیں۔ इस प्रकार के आतंकवादी फ्रांस में बिना किसी रोक टोक के गोपनीय और सार्वजनिक गतिविधियां अंजाम दे रहे हैं।
और अब रुक करते हैं भारत का। भारत प्रशासित कश्मीर में अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, ऐसा दावा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी तैयारी का ऐलान कर दिया है। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं श्रीनगर से हमारे संवाददाता सिप्ते मोहम्मद हसन।
भाजपा के राज्य शाखा के महासचिव ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के हवाले से उनकी पार्टी बिल्कुल तैयार है और उन्हें ये आशा है कि वो तमाम लोकसभा सीटों को जीतकर ये बात सिद्ध करेंगे कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित की है और तामीर तरक्की के साथ साथ यहाँ के लोगों का समर्थन भी हासिल किया है। अशोक कोल, जो भाजपा के महासचिव है, ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर में गैर मामूली तब्दीली आई है, यहाँ पर विकास हुआ है और लोग जबरदस्त खुश हैं। उन्होंने कहा कि हर तरफ अब खुशहाली ही खुशहाली नजर आ रही है और इसी का यह फलस्वरूप है कि अब जो यहाँ के राजनीतिक दल है वो बौखलाहट के शिकार हुए हैं और वो ऐसी राजनीति करना चाहते हैं जिससे एक बार फिर जम्मू कश्मीर का वातावरण बर्बाद हो, परंतु हम उन्हें बताना चाहते हैं कि उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। भाजपा ने कहा है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के हवाले से तैयारी मुकम्मल कर ली है और उनके पास ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं जिससे जम्मू कश्मीर के विकास में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के तमाम राजनीतिक दलों से आह्वान किया कि वो जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने और तामीर तरक्की के लिए प्रशासन का साथ दें। इस बीच लोकसभा में शेड्यूल ट्राइब बिल पास होने के बाद घाटी के जितने भी कैटेगरी से वाबस्ता लोग हैं, उन्होंने श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमें ये आशा है कि हमारी बात सुनी जाएगी, परंतु जो मुतालबात हमने रखे थे उन पर पूरा अमल नहीं हुआ है।
15 जनवरी उन्होंने डेडलाइन रखी है कि ये जो पोस्ट वो दे रहे हैं रिक्रूटिंग एजेंसीज को, 15 जनवरी उन्होंने डेडलाइन रखी है। गैजेट तो हम चाहते हैं गैजेट निकल आए, अब ये कहते हैं गैजेट निकल आए उसके हम उसके लिए एक पेज यहाँ नेट पर दस्तियाब है।
सिप्ते मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
दोस्तों, राजनीतिक चर्चा का ये दैनिक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
ईरानी व्यंजन।
श्रोतागण, कार्यक्रम ईरानी व्यंजन में आपका स्वागत है। स्वाति और अख्तर अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में हम कोह गिलुए व बोयर अहमद प्रांत की यात्रा पर जाएंगे और आपको इस हरे भरे सुंदर प्रांत के लोगों के 2 पकवानों से अवगत कराएंगे।
दोस्तों, कोह गिलुए व बुयर अहमद प्रांत का केंद्रीय नगर यासूज है, जो लुर जाति के लोगों की बहुलता वाला इलाका है। लुर कौम ईरान के अहम जातियों में से एक है, जो जागरूस पर्वत श्रृंखला से लेकर दक्षिण पश्चिम में खुजिस्तान प्रांत के मैदानों तक और मध्यवर्ती ईरान में आबाद है। इसमें इलात और दूसरी कई शाखाएं शामिल हैं। लुर जाति के लोग एक साथ मिलजुल कर बड़े बड़े परिवारों और खानदानों के रूप में जीवन गुजारना पसंद करते हैं। इस जाति के कुछ खानदान और परिवार अब भी गर्म और ठंडे मौसमों में कूच करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं।
आज हम यासूज शहर आए हैं और यह एक पहाड़ी शहर है जो देना पर्वत की आंचल में स्थित है। यह जागरोस पर्वत श्रृंखला से मिला हुआ इलाका है। अतीत में यानी लगभग 2000 साल पहले यासूज से 6 किलोमीटर की दूरी पर तल खुसरो नाम का एक शहर हुआ करता था जो बोयर अहमद उलिया परिवार के शासकों का केंद्र था। वह इस शहर को अपनी राजधानी के रूप में प्रयोग करते थे और यहाँ बड़ी रौनक थी। इस समय इस शहर की जगह पर कुछ पुराने टीले हैं, जबकि एक गांव ही आबाद है। यासूज शहर भी अतीत में इलाम के बड़े शासन का ठंडा इलाका था, जहां गर्मियों में शासक वर्ग के लोग जाकर ठहरते थे। कांस्य युग से ही इस इलाके को जीवन यापन का अच्छा स्थान माना जाता था। यह ऐतिहासिक टीले 3000 वर्ष ईसा पूर्व के हैं। यहाँ मिलने वाले अवशेष और पुराने कब्रिस्तान से इसका पता चलता है।
पौष्टिक और स्वादिष्ट ईरानी खानों का परिचय। घर बैठे सीखिए लज्जतदार ईरानी खाने पकाने की विधि। कार्यक्रम श्रृंखला ईरानी व्यंजन में हर शनिवार को कार्यक्रम ईरानी व्यंजन।
दोस्तों, यासूज का इतिहास तो बहुत पुराना है ही, साथ ही यहाँ की प्रकृति भी बहुत सुंदर और बहुत मनमोहक है। पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ बहुत सारे झरने और जल सोते हैं। शहर में प्रवेश के मुख्य रास्ते पर लिखा है, झरनों और जल सोतों के शहर में आपका स्वागत है। यहीं से इंसान को बड़ा विचित्र आभास होता है और आंगतुंग महसूस कर लेता है कि सैर का बेहतरीन मौका हाथ आ गया है। यहाँ की अद्भुत प्रकृति पर्यटकों को एक अलग ही दुनिया में पहुंचा देती है। कोहगले व बुवेर अहमद के केंद्रीय नगर यासूज के प्राकृतिक आकर्षणों में यासूज का झरना, रॉक मैदान आदि बहुत मशहूर हैं। यासूज झरना शहर के केंद्रीय भाग से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये शहर के उत्तरी भाग में है। इस झरने का पानी 10 मीटर की ऊंचाई से जागरोस पर्वत के भीतर से निकलता है और नीचे गिरता है। इससे बड़ा मनमोहक दृश्य पैदा हो जाता है। लोग घंटों इस झरनों को निहारते रहते हैं और इसका आनंद लेते हैं। इस झरने के आसपास टेढ़ी मेढ़ी बल खाती नहरें हैं, जिनके किनारे फलों के बाग और भरी भरी चरागाहें हैं, जिनमें दूर दूर तक फूल खिले दिखाई देते हैं। प्रकृति से लगाव रखने वाले लोग यहाँ पहुंचकर हैरान रह जाते हैं। पर्यटक यहाँ अधिकतर बहार, गर्मी और पतझड़ के मौसम में जाते हैं और ढेरों सुंदर यादों के साथ वहां से लौटते हैं।
यासूज की यात्रा दरअसल संस्कृति, कल्चर, प्राकृतिक और परंपराओं के दर्शन की यात्रा होती है। इस शहर के कल्चर और रहन सहन से अगर अधिक अवगत होना है तो इस शहर और उसके आसपास के गांवों में बसने वाले लोगों के दस्तरखान पर बैठना होगा। इस शहर के लोग गांवों में बसने वाले ग्रामीण या खानाबदोश जब दस्तरखान बिछाते हैं तो उस पर स्थानीय पारंपरिक पकवानों की खुशबुएं फैलती है और फिर लोगों के लिए खुद को रोक पाना कठिन हो जाता है। जब जागरोस पर्वत का नाम आता है तो ओक ट्री या बलूत का नाम भी मन में आ ही जाता है। बलूत का पेड़ वर्षों ही नहीं सदियों से जागरूस पर्वत श्रृंखला के करीब बसे गांवों, शहरों और बस्तियों के लोगों के जीवन का हिस्सा रहा है। बलूत का पेड़ जाड़ों में एक तो घरों को गर्म रखने में मदद करता है और दूसरा कबायली लोगों को इस पेड़ से आजीविका भी मिलती है। बलूत की रोटी भी बहुत ही मशहूर है। बलूत का फल आग में डालकर भून लिया जाता है और फिर उसका छिलका हटाकर भीतर का गुदा खाया जाता है। यह बड़ा मीठा और स्वादिष्ट सूखा फल माना जाता है। कुह गिलुए व बुयेर अहमद के गांवों में रहने वाले या बंजारे बलूत के फल को कूट लेते हैं और फिर उससे रोटी पकाते हैं। यह रोटी स्वादिष्ट होने के साथ ही कई बीमारियों की दवा भी मानी जाती है। इस रोटी से पेट की कई बीमारियों का इलाज होता है। बलूत का फल इस्तेमाल करने से आंतों के भीतर तेजाब या एसिड कम होता है, इसलिए जिन लोगों को अल्सर की शिकायत है उनके लिए यह फल बहुत ही फायदेमंद है। इसमें चूंकि विटामिन बी होता है इसलिए खून की कमी के इलाज में भी इसका योगदान होता है।
गांवों की महिलाएं घरों के भीतर बलूत के फल के छिलके को खास चाकू से, जिसे वे रोजंग कहती हैं, काटती हैं और उसके भीतर मौजूद बादामी रंग के दाने को बाहर निकाल लेती हैं और धूप में सुखाती हैं। एक हफ्ते बाद इस दाने का बादामी रंग का छिलका हट जाता है। इस छिलके को जफ्त कहा जाता है, जो दवा के रूप में इस्तेमाल होता है। घरेलू इलाज में ये बहुत मददगार होता है। बाल गिर रहे हों तो जफ्त के पानी को मेहंदी में मिलाते हैं और कलर की तरह बालों में लगा लेते हैं। जफ्त एक्जिमा का इलाज करता है और दूसरी बीमारियों में भी फायदेमंद है। त्वचा की बीमारियों के इलाज के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। संक्रमण के इलाज में भी ये बहुत ही प्रभावी है।
धूप में सूखे हुए बलूत के फल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे ताकि बाद में उसकी छोटी छोटी गोलियां बना ली जाए, जिसे क्लिक या गिल्ग कहा जाता है। गिल्ग की रोटी को लोग बड़े चाव से खाते हैं। यह रोटी बनाने के लिए गिल्ग को गेहूं के आटे में मिला देते हैं और उससे बड़ी ही स्वादिष्ट रोटी पकाते हैं। यह रोटी पकाने के लिए गिल्ग को एक हफ्ते के लिए पानी में भिगो देते हैं। कुछ समय के बाद वह गूंदे हुए आटे की भांति हो जाता है और इसे अलग बर्तन में रखकर फिर से गूंदते हैं। अब इसे बर्तन में से एक खास कफगीर से निकालते हैं और चूल्हे पर चढ़ी पतीली में डालकर फैलाते हैं। थोड़ी थोड़ी देर से इसे पलटना होता है ताकि दोनों तरफ अच्छी तरह से पक जाए। यह गहरे ब्राउन रंग की रोटी होती है जो दूसरे खानों के साथ परोसी जाती है।
दोस्तों, अब हम आपको कोह गिलुए व बुयेर अहमद प्रांत की सैर करा रहे हैं और वहाँ के पकवानों के बारे में बता रहे हैं। स्वादिष्ट रोटी के बाद हम आपको एक और पकवान के बारे में बता रहे हैं। यासूज के खाने सादे और बहुत ही लजीज होते हैं, साथ ही बड़े पौष्टिक भी होते हैं। बाहर का मौसम आता है और लोग पहाड़ों पर जाते हैं, मैदानों में घूमते हैं और वहाँ से तरह तरह की साग सब्जियाँ और खाने की दूसरी चीज़ें जमा करते हैं। इन्हीं में से एक सब्जी है कंगर, जिसे अंग्रेजी में स्पेयर थिजल कहते हैं। ये बाहर के मौसम में खुद से उग आने वाली सब्जियों में है। यासूज के लोग इससे बड़ी स्वादिष्ट डिश बनाते हैं जिसका नाम कंगर पुलाव है।
कंगर खुद से उगने वाली जंगली वनस्पति है और इसका तना मोटा होता है। इसकी पत्तियां पर कांटे होते हैं और इसे सब्जियों के साथ ही सूप में भी डाला जाता है। कुछ लोग इसे सलाद में कच्चा ही खाते हैं। यह बहुत ही पौष्टिक होता है। इससे ब्लड शुगर और चर्बी कम होती है, लेकिन अगर किसी को किडनी में पत्थर हो तो इसे इसके प्रयोग से बचने की सलाह दी जाती है।
ये डिश बनाने के लिए 300 ग्राम गोश्त, 3 कप कंगर छोटे टुकड़ों में कटी हुई, 1 कप प्याज कटी हुई, 3 कप चावल, इसके अलावा तेल, काली मिर्च, हल्दी और केसर इच्छानुसार। कंगर को बहुत अच्छी तरह से साफ किया जाता है और धोया जाता है। इसमें यह ख्याल रखना जरूरी है कि उसके कांटे पूरी तरह से निकल जाएं। लोग दस्ताने पहनकर यह काम करते हैं ताकि कांटे हाथ में न चुभ जाएं। اس کے تنے کو جو موٹی مولی جتنا موٹا ہوتا ہے چاقو سے تراش لیا جاتا ہے تاکہ اس پر کوئی کانٹے نہ رہ جائیں, اور پھر اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیتے ہیں۔
اب کٹی ہوئی پیاز کو تیل میں ڈال کر تل لیتے ہیں, اور پیاز لال ہو جانے کے بعد کنگر کو اس میں ڈال کر چلاتے ہیں۔ کچھ منٹ کے بعد جب کنگر کسی حد تک تل اٹھے تو اس میں مسالہ ڈال دیتے ہیں, اس سے اس کی مہک اچھی ہو جاتی ہے اور رنگ بھی بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے۔ اب اس میں گوشت ڈال دیتے ہیں اور تھوڑی دیر پکنے دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں پانی ڈالتے ہیں تاکہ کنگر اور گوشت اچھی طرح سے پک جائے۔ اب چاول تیار کرتے ہیں اور چاول کی تہ لگاتے ہیں۔ ہر تہ کے بعد تیار کنگر کو گوشت کو بچھاتے رہتے ہیں۔ سب سے اوپر کیسر ڈال کر دم لگاتے ہیں۔ اس طرح یاسوج کا کنگر پلاو تیار ہو جاتا ہے۔
تو دوستوں, کارکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے۔
اچھی عادتیں۔
دوستو, کارکرم اچھی عادتیں کی کل نکڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہردادی اور رویش زیدی کا سلام سویکار کیجیے۔
دوستوں, پچھلے کارکرم میں ہم نے ساموہک کارکرموں اور پارٹیوں میں بھاگ لینے کے ششٹاچار پر بات کی تھی۔ ہم نے الیکھ کیا تھا کہ ساموہک آیوجنوں یا پارٹیوں میں کھانے پینے کے نیموں اور طور طریقوں کا پالن کرنا ضروری ہے, کیونکہ اس سے لوگ آپ کے ویکتتو کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ الگ الگ موقعوں پر ہر ویکتی کے لباس پہننے کا طریقہ اس کے پریچے اور پہچان کے مہتوپورن سنکیتکوں میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ آپ کا لباس دراصل غیر موکھک روپ سے سندیش دیتا ہے۔ آپ اپنے لباس سے کافی حد تک دوسروں کو پربھاوت کرتے ہیں۔ سماجک ششٹاچار میں ویش بھوشا یا لباس کے مہتو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مہنگے سے مہنگے کپڑے پہنیں, بلکہ کچھ ٹپس اپنا کر آپ اپنے پاس موجود چیزوں کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں۔
پارٹی یا ساموہک سماروہ کا ششٹاچار ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ یاد دلایا جاتا ہے کہ پارٹی میں ونمر رہنا چاہیے, ادب سے کھانا کھانا چاہیے, تہذیب کے دائرے میں اٹھنا بیٹھنا چاہیے اور لوگوں سے ملنا جلنا چاہیے۔ بے حد اونچی آواز میں اور چلا کر بات نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا میزبان ہونا بھی ایک کلا ہے, جس کلا کا پریوگ آپ اپنے مہمانوں کو خوش رکھنے کے لیے کرتے ہیں, اسی لیے ہر کوئی اتساہت ہو کر آپ کا نمنترن سویکار کرتا ہے۔ اگر پارٹی کے ششٹاچار کا پالن کیا جاتا ہے تو انت میں دونوں یعنی میزبان اور مہمان سنتوشت ہوتے ہیں۔
ایک مہمان کے روپ میں آپ کو استھتی کے انوروپ مناسب لباس پہننا چاہیے۔ یدی آپ کو ایک اوپچارک اوسر پر آمنترت کیا جاتا ہے تو ایک اوپچارک پوشاک جو اس اوسر کے لیے اپیکت ہے وہ پہنے, اور اگر آپ کو ایک انوپچارک کارکرم میں آمنترت کیا جاتا ہے تو لگ بھگ کوئی بھی لباس جس میں آپ روچی رکھتے ہیں پہن سکتے ہیں۔ اگر آپ پارٹی کے وشے کے بارے میں پریاپت نہیں ہیں تو پارٹی میں جانے سے پہلے اپنے میزبان سے پوچھ لیں کہ کس سلسلے میں اس پارٹی کا آیوجن کیا جا رہا ہے۔
آپ کو نردھارت سمے کے انوسار کارکرم استھل پر پہنچنا چاہیے۔ سماروہ میں نردھارت سمے سے پہلے पहुंचना भी ऐसा ही है जैसे अंतिम मिनट में पहुंचना, क्योंकि इससे मेज़बान के लिए तैयारी में बाधा उत्पन्न हो सकती है और ये मेज़बान के लिए तनाव का कारण बन सकता है। ये सच है कि हर कोई सामाजिक और बहिर्मुखी नहीं होता है, लेकिन बातचीत से न शर्माएं। थोड़े से आत्मविश्वास के साथ आप कुछ ही देर में दूसरे मेहमानों के साथ घुल मिल सकते हैं।
आपका मिजाज चाहे जैसा भी हो, जब आप लोगों से मिलें तो खुश मिजाज और आश्वस्त रहें। अगर आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा है तो उसके बारे में बात करके पार्टी का मजाक खराब न करें। बातचीत के अंत में कहें कि आपसे बात करके या आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बड़े कार्यक्रमों में या फ्रेंडली पार्टियों में अपने फ़ोन ऑफ या साइलेंट मोड में रखें। अगर आप पार्टी में अपना फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं तो मेज़बान और दूसरे मेहमानों से इसकी अनुमति ले लें।
पार्टी में आमंत्रित करने के लिए मेज़बान का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलें। यह आपकी शिष्टता और अच्छे व्यवहार की निशानी है। इस तरह के व्यवहार और पार्टी शिष्टाचार के साथ आप और पार्टियों में आमंत्रित होने की उम्मीद कर सकते हैं। किसी पार्टी में आपका व्यवहार या शिष्टाचार आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। जब आप जानते हैं कि मेज़बान और अन्य मेहमानों के साथ कैसा व्यवहार करना है, तो आप पार्टियों का आनंद ले सकेंगे और आसानी से नए दोस्त बना सकेंगे। शिष्टाचार के अनुसार आप मेज़बान को अलविदा कहते समय धन्यवाद दें और फिर अगले दिन कॉल या टेक्स्ट के माध्यम से आभार जताएं।
दोस्तों, पार्टी में आमंत्रित करने के लिए मेज़बान का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलें। जिस तरह से मेहमान के लिए ज़रूरी है कि वो समारोह या पार्टी के शिष्टाचार से अवगत हो और उसका पालन करे, इसी तरह मेज़बान को भी मेहमानों की सुविधाओं और ज़रूरतों का ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर आप पहले से ही अपने कार्यक्रम के लिए योजना तैयार रखेंगे तो मेज़बान की जिम्मेदारी निभाना कठिन नहीं होगा और सब कुछ योजना के अनुसार हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोई अव्यवस्था नहीं होगी और आप भ्रमित नहीं होंगे। एक और बात जिस पर आपको पार्टी से पहले ध्यान देना चाहिए वो ये है कि अगर आपको कुछ चीज़ें करने में कठिनाई होती है तो पार्टी से पहले इसका अभ्यास करने का प्रयास करें, ताकि आप इसे सीख सकें और पार्टी में इसे अच्छी तरह से अंजाम दे सकें। कोई नया काम शुरू ना करें ताकि कोई अव्यवस्था न हो। साथ ही एक मेज़बान के तौर पर आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि मेहमानों को न सिर्फ असहज महसूस न हो।
एक पेशेवर मेज़बान की तरह ऐसे मेहमानों को आमंत्रित करें जो एक दूसरे के अनुकूल हों। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर शायद हर कोई ध्यान नहीं देता है। अर्थात ऐसे लोगों को आमंत्रित करें जिन्हें आप जानते हों और उनके आपसी संबंध से भी अवगत हों, ताकि आप इस बात से अधिक सहज रहें कि मेहमानों के बीच कोई समस्या या मतभेद न हो। उदाहरण के लिए, आप दो परिवारों को एक साथ आमंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि किसी वजह से उनमें अनबन भी रहती है और वे एक दूसरे को देखकर झगड़ते हैं। इसलिए इन दोनों परिवारों के साथ आमंत्रित करने से आपके और आपके मेहमानों के लिए समस्या उत्पन्न होने के अलावा कोई परिणाम नहीं निकलेगा।
एक मेज़बान के रूप में मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत करने का प्रयास करें। आपका प्रारंभिक संपर्क आपके मेहमानों को पूरी पार्टी के दौरान सहज और खुशी का एहसास प्रदान करेगा। जितना हो सके प्रत्येक मेहमान का ख्याल रखें। अगर आप देखें कि पार्टी में कोई व्यक्ति अकेला खड़ा है तो उसके पास जाएं और उससे कुछ बात करें। जोड़ों को एक दूसरे से अलग करना और शांत लोगों को अधिक उत्साही और शोर करने वाले लोगों की बगल में बैठाने से माहौल गर्म और रोमांचक होता है और बातचीत जारी रहती है।
मेज़बान के रूप में मेहमानों के साथ बातचीत शुरू करने का प्रयास करें। इसका मतलब है कि मेज़बान के तौर पर आपको मेहमानों के साथ खुलकर बातचीत करना आना चाहिए, और अगर पार्टी के माहौल में सन्नाटा है तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप चुप्पी तोड़ें और पार्टी को संभालें। मेहमानों के साथ बातचीत में संतुलन बनाए रखने का ध्यान रखें, यानी बहुत ज़्यादा बात न करें, बहुत शांत और उबाऊ भी न रहें। इस बात का ख्याल रखें कि सिर्फ कुछ विशिष्ट लोगों से ही बात न करें। अगर आपकी बातचीत सिर्फ कुछ खास लोगों के साथ ही होगी तो बाकी मेहमान अपमानित महसूस करेंगे। अपने मेहमानों से व्यक्तिगत और निजी प्रश्न न पूछें और उनकी प्राइवेसी में हस्तक्षेप न करें।
पार्टी के दौरान कोई भी ये पसंद नहीं करता है कि उसे फलों के छिलकों और बचे हुए टुकड़ों के लिए सिर्फ इसलिए हाथ पांव मारना पड़े क्योंकि इसे रखने के लिए किसी विशेष जगह का प्रबंधन नहीं किया गया है। खाने की चीजों के पास बहुत सारे छोटे बर्तन रखकर वहां अव्यवस्था उत्पन्न न करें। अगर आप मेहमान हैं तो अपना कचरा इकट्ठा करने से पहले ये देख लें कि कूड़ेदान कहाँ रखा गया है। इसके अलावा नैपकिन, सैनिटाइजर और स्वास्थ्य संबंधित चीजों की उपलब्धता को सुनिश्चित कर लें।
दोस्तों, अप्रत्याशित घटनाओं का प्रबंध करना एक ऐसा कौशल है जिसे एक मेजबान के रूप में आपको जानना चाहिए, क्योंकि अक्सर किसी भी पार्टी में अप्रत्याशित घटना घट सकती है, जैसे भोजन की कमी, फर्श पर पानी या खाना गिरना, बर्तन टूटना, बच्चों का गिरना, मेहमानों का देर से आना, किसी का मजाक उड़ाया जाना, चाहे आप मेजबान हों या मेहमान, खाना गिरने और अन्य संभावित असुविधाओं से शांति से और खुशमिजाजी के साथ निपटने का प्रयास करें।
ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं निश्चित रूप से अव्यवस्था, असुविधा और दुर्व्यवहार का कारण बन सकती हैं। ऐसे मामलों में मेजबान के रूप में उचित प्रबंधन के साथ आप माहौल को शांत बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। एक मेजबान के रूप में अपना संयम बनाए रखने का प्रयास करें। बिना बुलाए मेहमान को साथ लाना सही व्यवहार नहीं है। ऐसा व्यवहार आपके लिए आश्चर्य पैदा करेगा। हालांकि अगर आपकी पार्टी में कोई बिना बुलाए मेहमान है तो दयालु बनने का प्रयास करें। कोई भी विनर मेजबान किसी बिना बुलाए मेहमान के कारण पार्टी का माहौल और अपना और अपने मेहमानों का समय खराब नहीं करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्थिति कैसी है, इसे प्रबंधित करना आप पर निर्भर करता है।
इस बात के लिए आभारी रहे कि मेहमानों ने आपके लिए समय निकाला और आपका निमंत्रण स्वीकार किया, और इस आभार को अपने व्यवहार से प्रदर्शित करें। उन्हें दिखाएं कि आप अपने साथ उनकी उपस्थिति से खुश और संतुष्ट हैं। अगर आप एक मेजबान के रूप में इस तरह से पेश आते हैं तो हर कोई आपके निमंत्रण को स्वीकार करना चाहेगा और हर कोई निस्संदेह आपकी पार्टियों में शामिल होने का आनंद उठाएगा। अगर आप एक अहंकारी की तरह व्यवहार करेंगे तो उससे आप एक स्वार्थी और अहंकारी व्यक्ति के रूप में देखे जाएंगे और कोई भी दोबारा आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहेगा। इस कार्यक्रम में हमने जिन बातों पर चर्चा की उन्हें जानने और उनका अवलोकन करने से पार्टियों के आयोजन के तरीके में सुधार होगा और आप दूसरों की नज़रों में सम्मानजनक स्थान बना सकेंगे।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है। हमें अनुमति दीजिए।